लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम लोगों के मूल और स्मृति का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्व के समस्त बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका अनुभव और ज्ञान युवाओं को भविष्य की ओर आशा और जिम्मेदारी के साथ देखने में मदद करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, हम अपने बुधवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवंजेली गौडियम सुसमाचार के खुशी पर एक चर्चा सुन रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने सामाजिक धर्म शिक्षा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान विश्व में नवीन सुसमाचार प्रचार के संबंध में प्रेरितिक प्रबोधन एवंजेली गौडियम सुसमाचार की खुशी प्रकाशित की। 24 नवंबर सन 2013 को प्रकाशित किए गए अपने इस प्रेरितिक प्रबोधन में संत पापा फ्रांसिस पूरी कलीसिया से यह आग्रह करते हैं कि हम सभी ख्रिस्तीय अपने जीवन में सुसमाचार के एक नए अध्याय की शुरुआत करें। वे कलीसिया को शिष्यों का एक समुदाय घोषित करते जो सदैव प्रेरिताई के कार्य हेतु बुलाई गई है। एवंजेली गौडियम संत पापा फ्रांसिस के परम धर्माध्यक्षीय काल के विशेष मुद्दों पर प्रकाश डालता है, जहां हम ख्रिस्तियों का गरीबों के प्रति कर्तव्य, आर्थिक, राजनैतिक और अन्य कानूनी बातों के संबंध में उत्तरदायित्व का जिक्र पाते हैं। अपने प्रेरितिक प्रबोधन के प्रथम अध्याय में संत पापा फ्रांसिस पल्ली के महत्व पर जोर देते हैं, जो पुरोहितों और सामुदायिक खुलेपन के आधार पर प्रेरिताई को एक अलग रूप प्रदान कर सकता है। वे प्रवचनों में कलीसिया के अधिकारियों और समुदाय से आग्रह करते हैं कि वे स्थानीय पल्लियों के क्रियाकलापों के संग अपने को संलग्न करें। वे धर्माधीक्षकों का अपने धर्म प्रांत के प्रति उत्तरदायित्व का जिक्र करते हैं। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस पहले अध्याय में इस बात की सत्यता को घोषित करते हैं कि वर्तमान में दस्तावेजों के संबंध में हम उस तरह की रुचि नहीं पाते हैं जैसे कि अतीत में हुआ करता था, साथ ही उन्हें शीघ्र भुला दिया जाता है। इसके बावजूद यहाँ मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि मैं जिन बातों का जिक्र कर रहा हूँ वह क्रियाकलापों कार्यक्रमों पर आधारित है जिसके महत्वपूर्ण परिणाम हैं। मैं आशा करता हूँ कि हम सभी प्रेरितिक मार्ग और प्रेरिताई परिवर्तन के मार्ग में आगे बढ़ने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास करेंगे जो उन चीजों को वैसा ही नहीं छोड़ेगा जैसे कि वे वर्तमान समय में हैं। केवल प्रबंधन अपने में काफी नहीं है, सारी दुनिया में प्रेरिताई कार्य के संबंध में हम एक बने रहें। संत पापा पॉल छठवें हमें अपने इस बुलावे को गहरा बनाने का निमंत्रण देते हैं कि हम अपने में इस बात को स्पष्ट करें कि नवनीकरण का संदर्भ केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि यह पूरी कलीसिया को अपने में समाहित करता है। आइए हम यादों से भरे उन वचनों को मुड़कर देखें जो हमें चुनौती देते हैं। कलीसिया को चाहिए कि वह अपने को गहन चिंतन भरी निगाहों से देखे, अपने अस्तित्व के रहस्य पर चिंतन करे। यह सजीव और सक्रिय व्यक्तिगत आकलन हमें अपरिहार्य रूप में आदर्श कलीसिया की छवि, जिसे यीशु निष्कलंक वधु की तरह प्रस्तुत करते और प्रेम करते हैं, वर्तमान कलीसिया के वास्तविक रूप को जो दुनिया के सामने प्रस्तुत की जाती है तुलना करने को अग्रसर करता है। यह कलीसिया का नवनीकरण हेतु साहसिक और धैर्यपूर्ण संघर्ष है, वह संघर्ष जो उसके सदस्यों द्वारा कमियों को दूर करने का प्रयास है, जहां वे व्यक्तिगत रूप में अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं, जो उन्हें उदाहरण देने वाले ख्रिस्त की ओर प्रतिबिंबित करता है, जो गलतियों का एहसास दिलाते और उनके लिए पश्चाताप करने का आह्वान करते हैं। द्वितीय वैटिकन महासभा हमारे लिए कलिसियाई परिवर्तन को एक खुलेपन के रूप में प्रस्तुत करती, जिसे हम एक निरंतर नवनिकरण के रूप में पाते हैं, जो यीशु ख्रिस्त के प्रति निष्ठावान बने रहने से उत्पन्न होती है। कलिसिया का हर नवनिकरण मुख्यतः इस बात पर निहित होता है कि हम अपने बुलाहट के प्रति सत्य निष्ठा में बने रहें, जहां वे हमें बुलाते। कलिसिया के तीर्थ में यीशु हमें निमंत्रण देते हैं, जिससे वह अपने में सदैव नवीनता ला सके, जिसकी उसे जरूरत है, जैसे कि इस पृथ्वी पर वह एक मानवीय संस्थान के रूप में व्याप्त है। श्रोताओं, कलिसिया की बहुत सारी संरचनाएं हैं जो सुसमाचार प्रचार के प्रयास में विघ्न बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। यद्यपि अच्छी संरचनाएं भी हमारे लिए केवल तब सहायक होती हैं जब वे हमें निरंतर एक जीवन के लिए आगे ले चलती, उसे बनाए रखने में मदद करती है। नए जीवन के बिना और सच्चे सुसमाचार प्रचार की जीवटता के बिना, कलिसिया का अपने बुलाहट के प्रति निष्ठा के बिना कोई भी नई संरचना अपने में अप्रभावकारी होती है। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि मैं एक प्रेरितिक विकल्प के बारे में सपना देखता हूँ, वह है एक प्रेरितिक उत्साह जिसमें सभी चीजों को परिवर्तित करने की योग्यता है, जिससे कलिसिया की परंपरा चीजों को करने के तरीके, समय सारणियां, भाषा और संरचनाओं को स्वयं के लिए सीमित रखने के बदले विश्व की वर्तमान परिस्थिति में सुसमाचार प्रचार के सुलभ साधन बनाए जा सकते हैं। प्रेरिताई में बदलाव की नवीन संरचनाओं की मांग इस प्रकाश में समझी जा सकती है कि वे प्रेरितिक कार्य की सफलता हेतु अनुकूलित हों, जिसके फलस्वरूप साधारण प्रेरितिक क्रियाकलाप हर स्तर पर खुला और दूसरों को अपने में समाहित करे, जिससे हर प्रेरितिक कार्य में संलग्न व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित हो और इस भांति उसमें एक सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो, जो यीशु ख्रिस्त के संग मित्रता में अपने को बुलाए जाने का अनुभव करते हैं। संत पापा जोन पॉलुस द्वितीय एक बार ओसिनिया के धर्माध्यक्षों से कहा, कलिसिया में सभी नवीनता का अपने में एक उद्देश्य हो, मानो वे एक तरह से कलिसियाई अंतर्मुखता का शिकार नहीं होती हों। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि पल्ली अपने में पुराने संस्थान नहीं है, यह खासकर इसलिए कि यह अपने में बहुत लोचक है। यह अपने खुलेपन के कारण और पुरोहितों तथा समुदाय के प्रेरितिक सृजनात्मक क्रियाकलापों के संबंध में कई रूपों को धारण कर सकती है, जबकि यह निश्चित रूप में सुसमाचार प्रचार का एकमात्र संस्थान नहीं है। लेकिन यदि पल्ली स्वयं को नवीन और निरंतर अनुकूलता के योग्य बनाने का साक्ष्य प्रस्तुत करती, तो यह अपने पुत्र और पुत्रियों के बीच में एक सजीव कलिसिया रूपी निवास स्थल बनती है। यह हमारे लिए इस बात का साक्ष्य देता है कि यह सचमुच में परिवारों और लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, और यह बेकार की एक संरचना नहीं बनती जो लोगों की पहुंच से बाहर हो, या कुछ एक चुनिंदे लोगों का एक समूह जो स्वयं अपने में डूबे हुए हैं। पल्ली एक निश्चित सीमा क्षेत्र में कलिसिया की एक उपस्थिति है, एक परिवेश जहां वार्ता के माध्यम विश्वास की घोषणा, करुणा के कार्य, पूजा अर्चना और महोत्सव के द्वारा ईश्वर के वचन सुने सुनाए जाते हैं, जिससे ख्रिस्तीय जीवन का विकास हो। इन सारे कार्यक्रमों के मध्य बल्कि अपने सदस्यों को प्रोत्साहित करते हुए सुसमाचार के लिए तैयार करता है। यह समुदायों का एक समुदाय और सदैव प्रेरित कार्य की एक पहुंच है, एक प्रार्थनामय स्थल जहां प्यासे अपनी यात्रा करते हुए प्यास बुझाने आते हैं। हमें इस बात को यद्यपि स्वीकारने की जरूरत है कि हमारे पल्ली लोगों के निकट रहने, सामुदायिकता और सहभागिता के संबंध में और प्रेरितिक कार्य में पूरी तरह उन्मुख होने हेतु अब तक स्वलंबी नहीं हुए हैं। श्रोताओं, हमने आज संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गाउडियम सुसमाचार की खुशी पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
सब है क्रिस्त के शरीर, कलीसिया के वो है शीर।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संघर्षण का युद्ध, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बातचीत की आशा को जीवित रखने के लिए बाध्य है। इस तरह वाटिकन राज्य विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गल्लाघेर ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को परिभाषित किया। अमेरिका जेस्विट पत्रिका के वाटिकन संवाददाता फादर जेरार्डो को एक साक्षात्कार में वाटिकन महाधर्माध्यक्ष ने यूक्रेन की अपनी हाल की यात्रा को याद किया। मुझे लगता है कि मैंने जो सीखा वह लोगों का दृढ़ संकल्प, उनका साहस था, लेकिन मैंने वहां होने वाली पीड़ा की गहनता के बारे में भी सीखा। उन्होंने जीवन के महान नुकसान और युद्ध के जारी रहने के डर पर भी प्रकाश डाला। महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर ने हिंसा और संघर्ष को अनदेखा किए बिना शांति की बहाली हेतु वार्ता के लिए आमंत्रण में परम धर्मपीठ की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, रूस द्वारा मध्यस्थता के लिए परम धर्मपीठ को कोई स्पष्ट निमंत्रण नहीं दिया गया है। हालांकि दोनों राज्यों ने मास्को के प्रेरितिक राजदूत के माध्यम से संपर्क बनाए रखा है। महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर ने टिप्पणी की कि रूस द्वारा परम धर्मपीठ की स्थिति की प्रशंसा की गई, लेकिन वे संभावित मध्यस्थता के लिए एक कदम आगे नहीं आए। जैसे कि मास्को आने के लिए संत पापा को कोई स्पष्ट निमंत्रण नहीं दिया गया। महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर ने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए परम धर्मपीठ के समर्थन को याद करते हुए कहा कि यह यूक्रेनियों पर निर्भर है कि वे दूसरों के साथ बातचीत करें, जाहिर है विशेष रूप से रूस के साथ। इस सिद्धांत के आधार पर वे कहते हैं कि परम धर्मपीठ उदाहरण के लिए डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्रों के स्वतंत्रता की एकतरफा घोषणा को मान्यता नहीं देगा। अगस्त में संत पापा की कीव यात्रा की आशाओं के बारे में महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर ने टिप्पणी की कि संत पापा को अपने घुटने के दर्द से काफी आराम पहुंचा है और उनकी गतिशीलता में बहुत प्रगति हुई है, इसलिए 24 से 29 जुलाई तक कनाडा की अपनी प्रेरितिक यात्रा के बाद अगले महीने में इस मामले को गंभीरता से देखना शुरू कर सकते हैं। उधर टूनिशियाई तट रक्षक ने सोमवार को घोषणा की कि उसने अपनी समुद्री सीमाओं से अनियमित प्रवास को रोकने के अपने प्रयासों के तहत 455 प्रवासियों को बचाया। गार्ड ने कहा कि कई अभियानों में तट रक्षकों ने देश के उत्तर पूर्व और दक्षिण तटों से समुद्र पार करने के 37 प्रयासों को विफल कर दिया। इन अभियानों में बचाए गए 455 लोगों में से 279 विभिन्न उप सहारा अफ्रीकी देशों के हैं, जबकि बाकी टूनिशियाई नागरिक हैं। हजारों प्रवासी हर साल भूमध्य सागर को पार करने का प्रयास करते हैं। मुख्य रूप से लोग टूनिशिया और लीबिया से यूरोप जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बसंत और गर्मी के मौसम में अवैध प्रवास के प्रयासों की संख्या बढ़ जाती है। उधर नाइजीरिया के कडूना राज्य में पिछले शुक्रवार को अपहरण किए गए फादर जॉन मार्क चेटनम की हत्या कर दी गई और फादर डोनातुस क्लियोपास अपहरणकर्ताओं से बचने में कामयाब रहे। कफानचन धर्म प्रांत के सूत्र वाटिकन न्यूज से इसकी पुष्टि करते हैं कि फादर चेतनम की हत्या अपहरण के दिन 15 जुलाई को ही हो गई और उनका शव 19 जुलाई को मिला। दो कैथोलिक पुरोहितों को तब ले जाया गया था जब ये यादिन गारू में क्रिस्त राजा पल्ली आवास में थे। कफनचन के धर्म प्रांत की एक विज्ञप्ति द्वारा दो पुरोहितों की त्वरित और सुरक्षित रिहाई के लिए प्रार्थना करने और पूरी आबादी से न्याय को अपने हाथ में लेने से परहेज करने के आमंत्रण पर अपहरण की खबर फैल गई थी। एक नए बयान में कफनचंद धर्म प्रांत के कुलाधिपति फादर इमानुएल ने गहरे दुख के साथ पूरे धर्म प्रांत को फादर चेतनम की मृत्यु की खबर से अवगत कराया और घोषणा की कि अंतिम संस्कार गुरुवार 21 जुलाई को कफनचंद के सन पेत्रुस महागिरजाघर में 10 बजे होगा। उधर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण राज्य के प्रमुख गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद श्रीलंका की संसद ने आज नए राष्ट्रपति के रूप में रानिल विक्रमसिंघे का चुनाव किया। इसी के साथ सरकारी विरोधी प्रदर्शन रुक गया। देश के गंभीर आर्थिक संकट के सामने सरकार के रवैये के खिलाफ प्रदर्शनों के कारण राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को अपने पद से इस्तीफा देने हेतु मजबूर किया गया। संसद के 225 प्रतिनिधियों को 3 उम्मीदवारों के बीच चयन करने के लिए बुलाया गया था। अंतरिम राष्ट्रपति विक्रमसिंघे को 134 वोट, पूर्व संचार मंत्री दुलस को 82 वोट और वामपंथी नेता अनुरा दियास नाइके को 3 वोट मिले। नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने एक राष्ट्रीय सुलह प्रक्रिया की शुरुआत की घोषणा की है। उधर विश्व पुस्तक राजधानी सलाहकार समिति के मूल्यांकन के बाद यूनेस्को के महानिदेशक आड्रे ओजाले ने स्ट्रासबर्ग फ्रांस को वर्ष 2024 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है। यूनेस्को के महानिदेशक आड्रे ओजाले ने कहा, अनिश्चित समय में कई लोग सपनों के स्रोत और शरण के रूप में किताबों की ओर लौट रहे हैं। दरअसल किताबों में मनोरंजन और सिखाने की अनोखी क्षमता होती है। इसी वजह से हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर कोई पुस्तकों और पठन के माध्यम से अपने ज्ञान को विकसित कर सके। इसलिए हर साल यूनेस्को एक विश्व पुस्तक राजधानी नामित करता है। 2023 में घाना का अक्रा शहर नामित हुआ है। उन्होंने कहा, मुझे 2024 के लिए स्ट्रासबर्ग को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यूनेस्को और विश्व पुस्तक राजधानी सलाहकार समिति रीडिंग फॉर द प्लैनेट जैसे कार्यक्रमों के साथ सामाजिक तनाव और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए किताबों पर स्ट्रासबर्ग के मजबूत फोकस से प्रभावित हैं। युवा लोगों को परिवर्तन के एजेंट के रूप में केंद्रित करता है। यूनेस्को ने 2003 में नई दिल्ली को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया था। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।